Thank you. रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक हुआ, 11,000 वर्षों तक रहे। 11,000 जब बीतने को थे अपने लीला के अंतिम समय में, कुछ दिन पहले रामचंद्र जी ने अपने कुछ दूतों को प्रजा का सुख दुख देखने के लिए भेजा। रात में वे लोग घूम करके सवेरे आए और बोले, बोलने में कुछ संकोच हो रहा था। उन्होंने कहा कि संकोच की कोई बात नहीं, जैसा देता हम वैसे बतलाना, हम प्रजाओं के पिता हैं, उनके अनुसार में हम उनका सुख दुख दूर करेंगे। एक दूत ने कहा, मैं गया और शाम को समय में अयोध्या के किसी एक मोहल्ले में गया। एक धोबी था वासर में, उसकी पत्नी कुछ विलंब से घर में आई किसी कारण से, और उसने अपनी पत्नी को 1,00,000 मारा और कहा घर से निकल जाओ, मैं राम नहीं, जो रावण के यहां लंका में इतने दिनों तक रही और राम ने उसे ग्रहण कर लिया, मैं वैसा नहीं, निकल जाओ, मैं ऐसी पत्नी को नहीं देखना चाहती, जैसी चाहिए जैसी खुशी रहती है। राम ने कहा ये तो बड़ी बुरी बात हुई, लोग ऐसे बातें भी करते हैं। इसलिए दूसरे दूत ने भी आज करके कुछ ऐसे कहा कि कुछ लोग गांव के परस्पर बैठे हुए थे और एक दूसरे से ऐसे ही बातें कुछ कर रहे थे, भाई ये तो बड़ी अनूठ भाई। राम जी कुछ विचार परीक्षा तो की नहीं और सीता जी को घर में रख लिया। भाई प्रभु का पाई
कहीं मद ना,
कहा इसको मद नहीं होता, राजा की बात कौन करे, अच्छा ऐसे भी बात कर रहे, ठीक। उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया, भैया तुम ही हमारे संकट के उबारने वाले हो, तुम्हारे वास्तविक तो हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं, सुख दुख में तुम हमारे शामिल रहते हो। कल सीता जी को ऋषि योग की इच्छा थी, उन्होंने उनसे कहा था, ये मैं बंगल जब जंगल में गई थी तो ऋषियों की पत्नियों से मेरी मित्रता हो गई थी, हमारी सहेलियों जैसे, मैं उनको कुछ कपड़े और अलंकार देना चाहती हूँ और कुछ बच्चों को कुछ मिठाइयाँ भी देना चाहती हूँ जिनको प्यार करती थी, इसलिए मैं किसी उस ऋषि आश्रम में विशेष करके वाल्मीकि जी के आश्रम के पास ही भारतराज का भी आश्रम है, मैंने प्रयाग वहाँ पर मैंने जाना था, तो ठीक है इसी बहाने सीता जी को कपड़े लपटे अलंकार लेकर के और तुम नौका में चढ़ करके ले जाना और तुमको वहीं छोड़ करके चला आना, आने के समय में उनको केवल बतलाना ये राम ने सदा के लिए आपका त्याग कर दिया है जीवन भर के। हर तुम्हें को लक्ष्मण जी सवेरे लेकर के चले, बड़ी सीता जी आज खुश हैं कि आज बहुत दिनों की मेरी मुराद पूरी होगी, मैं ऋषि कन्याओं को ऋषि पत्नियों को मैं आभूषण देकर के फिर लौटाऊंगी। किंतु जब वहां पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जब नौका पहुंची, लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी जी राम ने आपको सदा के लिए जीवन भर के लिए किया है, क्योंकि आप लंका नरेश के घर में कुछ दिनों तक रहे, उन्होंने मुझे यह दुखदायी या हमको कार्य करने के लिए कहा। यह अपने सुनते ही सीता जी बस बेहोश हो गई, पहले तो विलाप किया, फिर के बाद में बेहोश हो गई, और लक्ष्मण जी उसी रूप में उनके कपड़े लगते और उनको वहां से उतार करते और निर्माण मित्र रूप प्रभु का आदेश पालन करने के लिए सेवकों को क्या करना पड़ता है देखिए तब सेवक होता है ऐसे नहीं सेवक हुआ है। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की यदि अब जन्म होगा तो छोटा भाई होकर के नहीं आऊंगा अब तो बड़े भैया होकर के इसलिए कृष्ण लीला में बड़े भैया छोटे भैया होकर के इधर मैं सीताजी विलाप करके रोने लगी वाल्मीकि जी ने दोष सुना और उन्होंने तारामायण रच दिया उनको तो सभी पता है आए और सीताजी को सूत्री कह करके बड़े प्यार के साथ में ले गए अपने आश्रम में जहाँ पर महिलाएं का भजन करने का था बोली बोली महिलाएं जो भजन करती थी उन्हीं के पास एक कुटी ले ली और गर्भव की थी अभी कुछ दिनों की रख दिया जाने के बाद में उनको सांत्वना देने लगे और उनको रोज हरि कथा भगवान की लीला कथाएं सुनाने लगे और यह लौकुश का भी वहीं पर जन्म हुआ अपने हाथों से उन दोनों का संस्कार किया कुश का अग्रभाग पहले नीचे का भाग लौ और ऊपर का कुश कहलाता है इसलिए उसकी रक्षा की रक्षा मंत्र से इसलिए दोनों जमज पुत्र हुए थे इसलिए उन्होंने एक का नाम जो 10-5 मिनट पहले हुआ था उसका लौ और दूसरे का नाम दोनों बड़े सुंदर राम के समान लाल प्यार के साथ में पाला गया। सीता जी का जो गिरा था तो वो तो कुछ बढ़ गया एक तो महाराज उनके वाल्मीकि जी के आश्रम में उनकी कथाएं सुनती उनका लाल प्यार सीता जैसा पाती और दूसरी तरफ में बच्चों के लालन पालन में भी उनका गिरा कुछ कर गया और राम का क्या हुआ राजभवन में रहते हुए भी दिन रात उनका तो तीरा कोई भाग करने वाला नहीं था सीता जी से भी हम समझते हैं कि लाख गुना उनको गिरा किंतु कहें रात में नींद नहीं कभी कभी कुछ फल जैसा खा लिया और बस सीता की चिंता करते रहे। इधर में ये लोग कुछ बड़े होने लगे जब ये 4-5 वर्ष के हुए उनका उपनयन संस्कार किया और उनको सारी रामायण की ये सब सीता हरण के पहले तक सब जितना था उनको कंठस्थ कर दिया सारी और कुछ सर्ग रख दिया अंतिम वाला उत्तरखंड वाला और लंका इत्यादि का और सब दिया दोनों किशोर बालक रामचंद्र जी जैसे बल्कि युवावस्था और भी सुंदर कंठ सुभीला कोकिल को मात करने वाला और बिना जंत्र लेकर के जरा जूप पहने हुए घर में और बिना लेकर के जो गाते सबका चित्त मुक्त कर देते एक दिन ये गाते 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 गुमती से तट पर हुआ क्या रामचंद्र जी का मन नहीं लगता उन्होंने वाल्मीकि उनसे वशिष्ठ जी से कहा महाशय गुरु जी मैं कुछ यज्ञ करना चाहता मन तो लगता नहीं अकेले घर में क्या करें किसी से न बोलते चाहते हैं पागल जैसे उन मास रहते हैं सीता जी के पूरा उन्होंने कहा मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। अच्छा तुम यज्ञ तो कर सकते हो तो बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकते पत्नी सीता जी को ले आओ और यज्ञ करो बामदास बामबाग में रख करके यज्ञ करो सीता जी को कभी नहीं ला सकता फिर यज्ञ नहीं कर सकते सीधी सी बात है फिर भी गुरु जी यज्ञ करना है कोई उपाय बदला नहीं तो उपाय एक और है तुम्हारे पिताजी की 307 रानियां थी तो भी एक और शादी कर लो बस हाजिर उसमें हो जाएगा उसको लेकर के यज्ञ करो ये भी असंभव ये भी करो ये हमारी प्रतिज्ञा है और पिता के सिर हमारे हृदय में दोस्ती कोई इसलिए नहीं बन सकती जैसे वो पतिव्रता है मैं जो वैसे भी तो फिर कैसे जो फिर गुरु जी आप सर्वज्ञ हैं और सब कुछ करने वाले हैं फिर भी मेरा यज्ञ करने का कोई तरीका बदला नहीं। अच्छा एक तरीका और है स्वर्ण की सीता बनाई जाए और यज्ञ के समय में उसका प्राण संचार किया जाए और वो तुम्हारे बाएं तरफ में बैठी और दोनों मिलकर के यज्ञ में आप भी यज्ञ से यज्ञ करें ये मुझे मिलेगा। ठीक, स्वर्ण सीता बनाई गई और अपने सारे भाइयों के साथ में बंदर भालुओं को भी बुला लिया, सारे इष्ट मित्र सारी सेनाओं को बुलाया और गोमती के तट पर नैमिषारण्य में यज्ञ किया। सवेरे और शाम को, सवेरे यज्ञ होता है और शाम को दोपहर में कथा का विश्राम होता और यज्ञ का, और उस समय में भगवान की तरह तरह की लीला कथाएं होती, कुछ भगवान का भजन होता और ऐसे ऐसे जैसे बीच में हमारा 10 मिनट के लिए भजन हो जाता है ऐसे हुआ करता। इसी समय में बीच में एक दिन लौ कुछ दोनों का होता है, जटाजूट और कदली के वृक्ष, केले के वृक्ष के पत्तों को पहने हुए और बिना प्रधान करते, अद्भुत सुंदर अद्भुत सूर्य चांद दोनों मिलकर के वीणा का, वीणा की ध्वनि और इनकी ध्वनि अद्भुत, कोकिल के कंठ को भी ले जाने वाले स्वर से ये बागी का ये गान करने, नाना प्रकार के स्वरों से गाते गाते उसी जगह पहुंचे। लोगों रामचंद्र जी के सामने ले गए, उन्होंने कहा जिसे थोड़ा सा गान करो, तो उन्होंने देखा कि ये हमारा ही क्षेत्र गान हो रहा है, बच्चे क्या समझेंगे वही राम है और वही मेरी मैया सीता जी है। गान करने लगे, जब प्रथम शब्द, दो शब्द, तीन शब्द जब जन्म इत्यादि लिया, विवाह का जब प्रसंग आया, बहुत आनंद के साथ में सब लोग प्रसन्न मैया रो रही हैं, कई कई जी रो रही हैं, सुमित्रा जी और राम की आंखें भी छल छल आ रही हैं, सभी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं एकदम भूप और वही लीला कर रहा है। इसके बाद में कुछ सर्व और बोले, सीता रामचंद्र जी का मनभाष इत्यादि सुन करके सभी लोग एकदम चकर चकर करके रंगे मिल गए। कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं था जो ना रोए, हनुमान की तो बात ही क्या है, वो तो एकदम मुक्त हो गए, शरीर के लिए उनको धुने गई, राम जी होने लगे, भरत जी होने लगे। एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीसरे दिन, अब तो सभी लोग प्रतिदिन ठीक समय पर बैठ जाते और संख्या भी बड़े लोगों की बढ़ने लगी और धीरे धीरे इनका आरंभ हो गया। होते 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 जबकि राम का वनवास हो चुका, तो एक दिन रामचंद्र लोगों ने देखा, अरे ये भालक को ऐसे मालूम होते हैं कि जैसे राम जैसे ही हैं, राम तो प्रभु हो गए हैं किंतु ये बालक यदि राम यदि बचपन है तो ठीक ऐसा ही, कोई भी अंतर नहीं। कौशल्या की जगह नहीं जैसे यही राम का पिता होता। सभी लोग इस प्रकार से कह रहे हैं परस्पर। राम ने कहा कथा समाप्त होने पर, लक्ष्मण इस बच्चे को, दोनों बच्चों को सोने की थाल में सोने की अशक्तियां मोहरे भर करके ले जाओ और तरह तरह के वस्त्र, रेशमी और सोने के अलंकार इत्यादि लेकर के इस बच्चे को, और पूछना ये इनका परिचय क्या है, इसके मैया बाप कौन है, साथ परिचय लेना है। लक्ष्मण जी गए, पहले तो परिचय पूछा, बेटे तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारी मैया का नाम और पिता का नाम क्या है। तो लौ जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि आप गंभीर व्यक्ति हैं, विद्वान आदमी हैं, आप देख रहे हैं हम जटाजूट होकर के ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों का माता पिता का कोई परिचय नहीं होता, शास्त्रों ने ऐसा आदेश नहीं दिया है पूछने का, ब्रह्मचारियों का पूछना है तो गुरु का नाम परिचय परिचय पूछो, जो गुरु कौन है, कहाँ पर आश्रम है ये पूछो, हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, वही हमारे माता पिता भाई बंधु सब बस उन्हीं के आश्रम में हम रहते हैं, उन्हीं का हमारा परिचय है, बस ये शिष्य उनके हैं। अब तो लक्ष्मण जी झेप गए थे, हमने प्रश्न ये गलत किया है, ये तो बहुत बुद्धिमान और विद्वान मालूम पड़ता है छोटे देखने पर भी। उन्होंने कहा जी ये सोने के भरकर के रामचंद्र जी का ऐसा आदेश है कि सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए देना चाहते हैं आपको उपहार के रूप में, इसलिए इसको ग्रहण करो। कुछ और लोग बोले, हाँ जोड़ कर हमें इसे क्या आवश्यकता है, वाल्मीकि जी के आश्रम रहते हैं, केले के फल, अमरूद के फल लगे हुए हैं, भूख लगती है हम लोग उसे ले लेते हैं और केले के पत्ते पहन लेते हैं, इस रेशमी वस्त्रों की हमें क्या आवश्यकता है, ये हमें कहीं की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, इनका उनका फिर सब धन रहा है। रामचंद्र सब लोग कहने लगे कौन हो ये लड़के हैं राम के, किंतु पता कैसे लगे, लड़कों को तो विदा कर दिया, वाल्मीकि ऋषि जी को बुलाया, उनकी पूजा की पैरों की और उनसे कहा वाल्मीकि जी आप तो सब अंतर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मालूम होता है कि मेरी सीता आपके पास है और ये बालक कौन है आप किसका परिचय, क्या ये सीता जी के ही पुत्र हैं मेरे ही पुत्र हैं। वाल्मीकि जी ने कहा कि आप विश्वतर के हैं, ये आप ही के पुत्र हैं, सीता जी मेरे आश्रम में ही हैं, तो आपके आश्रम में है तो कल उनको सभा में जाइए, मैं उनसे तो एक प्रश्न करूंगा और सारी सभा सुनी फिर मैं उनको अंगीकार करूंगा, थोड़ा सा अपना कुछ परीक्षा दें बतलाएं जो वो पवित्र है। वाल्मीकि जी लौटे, इधर वो बच्चे जब लौटे वाल्मीकि जी के आने के पास, सीता जी उनके लिए प्रतीक्षा कर रही, देखा ये बहुत देर हो गई तब आए, दोनों बेटों को अपने कल आए बाएं गोदी में बैठा दिया, बैठा है आप मैं कुछ आपको भी छल बेटे देते हूँ, आज हम लोग एक राजा की सभा में गए थे, वहां पर हम लोग प्रवचन कर रहे थे, गान कर रहे, सभी लोग तमाम मधुर रूप से सुन रहे थे और सभी के आंखें से आंसू बरस रहे थे, मैया हमने बड़ी विचित्र बात देखी, क्या बेटा देखी हमने वहां कि वहां पर एक सोने की मूर्ति बनी हुई थी, तुम्हें उन्हें अंतर मैंने कुछ देखा ही नहीं, देखा कि तुम होती हो होती थी, बस इतना ही अंतर हमने देखा, सीता जी के आंखों से आंसू बरस रोने लगी, किंतु बेटे को कैसे बतलाए, उन्होंने मन में ये सोचा राम ने मुझे छोड़ा नहीं हमको नहीं छोड़ा, राजा ने रानी को किसी कारण बस्तर छोड़ा है किंतु मुझे नहीं छोड़ा है, अभी हमारे हमको भी लेकर के बाएं तरफ लेकर के यज्ञ कर रहे हैं तो हमको कैसे छोड़ सकते हैं, बच्चे देकर के आचंबित हो गए अपने दुपट्टों से उनकी आंखों को पोछने, मैया तू क्यों मैया मैया क्या बतला ये वही नाम है भाई मैं दुर्भाग्य सीता हूं हमें छोड़ दिया। इतने में वाल्मीकि जी पहुंचे, बोलिए बेटी राम यहां यज्ञ कर रहे हैं तुमको बुलाया है, हमारे समझ से तुमको समझना चाहिए जब पिता जब पति ने बुलाया है, सीता जी ने कहा आप जो कुछ आदेश करें मैं अभी की बेटी हूं जो कहें मैं वही करेंगी, जबकि बुलाया है और आप चाहते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार। दूसरे दिन सीता जी अपने दोनों बालकों को अपने साथ लेकर के वाल्मीकि जी के पीछे चली, सोचती चली जा रही क्या करेंगे क्या कहूंगी, सारी सभा पहले से आकर के लगी हुई है, घोषणा हो गई थी या सीता जी यहाँ पर सभा में आ रही है, बड़े धीरे धीरे पैरों से दृष्टि नीचे किए हुए घूंघट कुछ निकाले हुए आ रही है, सारी सभा उनको देकर के उठ खड़ी हुई, राम जी उठ करके खड़े हुए, देखने लगे ये क्या बात होती है, सीता जी आकर के जब खड़ी हो गई तो वाल्मीकि जी ने कहा राम से सीता जी को आपके सामने ऊपर मैंने किया है, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं कहना चाहते हैं। रामचंद्र जी ने कुछ दबी के वालों से उनसे पूछा प्रिय मैं तुमको हृदय से तो छोड़ नहीं सका, किंतु लोग कुछ ऐसा ताना खुशी करते हैं तुम्हारे हमारे संबंध में वार्तालाप करते हैं इसलिए लोग मर्यादा के लिए तुमको हमने ऐसा किया, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा प्रमाण हो ये तुम शुद्ध हो। सीता जी बोली अभी भी प्रमाण की जरूरत है, लंका नैराम पद के पश्चात में आते समय में अग्नि जी ने हमको आग से निकाल करके आपको दिया। उस समय उन्होंने अग्नि में साथ के भी सर्वत्र रहते हैं। बाई ने भी महाराज दशरथ पहन आकर के कहा कि यहाँ सीता पद श्रेष्ठ ग्रहण करो। सब लोगों ने साक्षी दी और फिर मैंने आपने मुझे ग्रहण किया है। और फिर वही अभी शंका बात हुई क्या, ये सीता जी के संबंध में सभी लोग जानते थे कि सीता जी को रावण चोरी करके ले गया और अपने यहाँ, किंतु आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुने हम, वो दक्षिण प्रदेश में गए, घूमते घामते एक गोदावरी के नदी के तट पर पहुंचे और वहां पर एक ब्राह्मण था, वो रोज रामायण का पाठ करता। जिस समय राम तक ये महाराज चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो वो बड़ा विरह में व्याकुल था, रो रहा था। हमारी सीता जी को लेकर के चला गया रावण, आज मैं खाऊंगा कि उन्हें मैं स्नान छोड़ दूंगा। चैतन्य महाप्रभु समय से चले गए और कुछ दिनों के बाद में लौट करके आए, एक पोथी का एक पत्र लेते आए, कूर्म पुराण का। और कूर्म पुराण में लिखा हुआ है, इसके पहले आप जगत में ये चीज सबसे प्रकाशित नहीं था, महाप्रभु जी ने पहली बार प्रकाशित किया। उन्होंने कूर्म पुराण का वह पत्र दिखा करके गुरु जी देखो अशुभ सीता को नहीं ले लिया हुआ। रामचंद्र जी पंडा से गोदावरी सुबह के चट पर जब पहुंचे, बारिश थी और आनंद आने वाला था, उसके पहले ही राम से और सीता से वार्तालाप हुई। उन्होंने अशुभ सीता को अग्नि को सौंप दिया और वहीं पर रही और नकुल सीता योग माया से बना करके और उसे ही शादी की जा रही हुई। और फिर लंका में रामचंद्र जी ने जब उनको त्याग किया, जब तुम जहां इच्छा चली जाओ, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मेरी सीता बना दो और मैं सीते में भस्म होकर चला जाऊंगी। यदि ये नहीं ग्रहण करते पहले क्यों नहीं बताया, और जो वहां से युद्ध करने की जरूरत क्या थी, कोई जरूरत नहीं, इतने लोगों को मारने की और मरवाने की जरूरत क्या थी। इतना कर करके लक्ष्मण जी से बोली, लक्ष्मण तेरे चरण में मैंने कुछ अपराध किए और इसलिए आज ये भोग भोगना पड़ा है। तुम भक्त हो, क्या दोष किया है? बचपन में जब मेरी शादी हुई हमारी राम के साथ में, पहली बार मैं राम के घर पर आई, रविवार में जब हम दोनों मिले तो तुम भी वहीं पर उपस्थित हो गए। मैंने कहा कि देवर अब तो आप यहां से पधारें, अब ये मेरा अधिकार है इनकी सेवा करने का, अब आप बाहर की सेवा करें। लक्ष्मण जी ने कहा कि सारे जीवन तक मैंने सेवा की और तुम एक दिन में आकर तो हमको यहां से हटानी चाहती हो, ये कैसे हो सकता है? दोनों ने फरियाद की राम से, या अब किसका अधिकार है, लेकिन अब मैं तो ये निर्णय नहीं दे सकता है। और वशिष्ठ को बुलाया जाए और वो इसका निर्णय लें। वशिष्ठ जी बुलाए गए।